Welcome to Awakening with Brahma Kumaris. Living Values के इस श्रृंखला में वादे के अनुसार आज हम बात करेंगे प्रेम की. लव यानी कि प्रेम यानी कि प्यार, मोहब्बत, स्नेह शाश्वत है. एक ऐसी धारा है जो नेचुरली सहज रूप से हर इंसान में बहती है, लेकिन अगर देखें तो आज प्रेम का स्वरूप बदलता नजर आता है. इसी मूल्य पर, इसी वैल्यू पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं खास माउंट आबू से आई ब्रह्मा कुमारी शीलू बहन जी. आपका स्वागत है शीलू बहन जी. और सबसे बड़ी बात शीलू बहन जी के साथ ये है कि 11 साल की छोटी सी उम्र से ब्रह्मा कुमारी संस्थान की पूरी फिलॉसफी को समझने की और उसे आत्मसात करने की जो कोशिश शीलू बहन जी की थी, उसमें आगे बढ़ते बढ़ते आप BSc किया, गोल्ड मेडलिस्ट बनी मुंबई यूनिवर्सिटी से. और एजुकेशन में यानी शिक्षा के क्षेत्र में किस तरह के मूल्य होने चाहिए, वैल्यूज़ होनी चाहिए, उसकी द्योतक बनी शीलू बहन. तो शीलू बहन जी, आज प्रेम की बात करते हैं. हम में से हर कोई ये जानता है कि हर रिश्ते की नींव प्रेम है. प्रेम नहीं होगा तो रिश्ता बन ही नहीं सकता. लेकिन आज ये बात भी सामने नज़र आ रही है कि हर रिश्ते का जो नींव है उसमें निहित स्वार्थ भी शामिल होते जा रहे हैं. कहीं ना कहीं वो प्रेम हावी ना होकर स्वार्थ हावी होता जा रहा है. चाहे वो पिता पुत्र का रिश्ता हो, चाहे वो माँ बेटे का रिश्ता हो, चाहे वो भाई बहन का रिश्ता हो, चाहे वो दोस्त मित्र का रिश्ता हो, या फिर गुरु शिष्य की भी बात अगर हम करते हैं, तो क्या हुआ है ऐसे समाज में कि टूटते मूल्य जो हैं, जो उसमें प्रेम सबसे खूबसूरत मूल्य माना जाता है, सबसे खूबसूरत इमोशन मानी जाती है, क्या हुआ है कि उसमें स्वार्थ का इतना प्रभाव पड़ गया है?
ठीक कहा आपने कि आज प्रेम का विकृत रूप बढ़ता जा रहा है, क्योंकि प्रेम तो बड़ा शुद्ध शब्द है जिसके लिए कहा गया है कि ये 2.5 अक्षर का ये शब्द है, प्यार, प्रेम, स्नेह. और इसके लिए हमें कोई पंडित बनने की ज़रूरत नहीं, कोई शास्त्र पढ़ने की ज़रूरत नहीं. और केवल अगर हमने इस शब्द को समझ लिया और जीवन में धारण कर लिया तो हम तो बहुत बड़े पंडित बन सकते हैं, अर्थात बहुत बड़े ज्ञानी बन सकते हैं. लेकिन आज हम देख रहे हैं कि ये प्रेम स्वार्थ का क्यों रूप लेता जा रहा है, क्योंकि हम अपने लिए चाहते हैं, मुझे मिले, मुझे मिले. ये वास्तव में दानवता है जिसके लिए कहा जाता है मेरा सो मेरा, तेरा भी मेरा.
बहुत बड़ी बात आपने कही कि मेरा तो मेरा ही है, तेरा भी मेरा,
तेरा भी मेरा ही है. तो जहाँ तेरा भी मेरा ही है या मेरा मेरे हाथ न लगा, तेरा सो मेरा और मेरे हाथ न लगा, ये जो हमारी प्रकृति बनती जा रही है इसमें स्वार्थ आता जा रहा है. लेकिन प्रेम में तो त्याग होता है, प्रेम में तो समर्पण ममता होती है, प्रेम में तो एक बलिदान होता है. वो प्रेम आज हम भूल गए हैं.
क्यों ऐसा हुआ है कि अगर भाई मुझे, मैं राखी बांध रही हूँ तो मुझे उम्मीद है कि वो इतने पैसे मुझे देगा, या एक उससे स्नेह जो था वो एक नेचुरल ना रह के बात ये हो गई है कि वो मेरा कितना मदद कर पा रहा है, क्या वो मेरे लिए कर रहा है? अच्छा, इवन प्रैक्टिकल लेवल पर नहीं, इमोशनल लेवल पर भी मैं उससे मांग ही रही हूँ, मैं उसे ये कह रही हूँ कि वो मुझे कितना सपोर्ट दे रहा है. भाई ही नहीं, पिता भी, शिक्षक भी, या फिर दोस्त भी, कहीं ना कहीं मेरा स्वार्थ है कि मुझे वो क्या दे पा रहा है, क्या वो मेरी बात कंटिन्यू सुनने को तैयार है, क्या वो चाहता है कि वो मुझे, क्यों क्यों मैं ये भूल गई हूँ, क्यों हमारा मूल स्वरूप जो था सहजता का वो क्यों हुआ है ऐसा?
हाँ, क्यों ये हो गया है? क्योंकि इच्छाएँ बहुत बढ़ गई है इंसान की. पहले ज़माने में इच्छाएँ इतनी नहीं हुआ करती थी. इंग्लिश में हम कहते हैं नीड्स एंड वांट्स. आज जो पहले ज़माने में वांट्स थी वो आज नीड्स हो गई है, आवश्यकताएं बनती जा रही है. लेकिन बहुत अंतर है नीड्स और वांट्स में. आज हमें ये भी चाहिए, वो भी चाहिए. एक गाड़ी होगी तो हम चाहेंगे दो गाड़ी मिल जाए, दो होगी तो सोचेंगे चार मिल जाए, दो कमरे का फ्लैट होगा हम चाहेंगे चार कमरे का हो, एक ड्रेस बहुत सुंदर होगी हम कहेंगे एक और मिल जाए. अब हम कितना पहनेंगे, कितना खाएंगे, कई जूते हमें, हमने कुछ देख लिया सोचेंगे हमको और मिल जाए. अब हमें आवश्यकता है नहीं, लेकिन देखा देखी में उसके पास है तो मेरे पास क्यों नहीं, वो इतना आगे जा रहा है, मैं क्यों नहीं।
तो इच्छाओं को हमने, आपने कहा, अपनी वांट्स को हमने नेसेसिटीज बना दिया, नीड्स बना दिया,
जी
जरूरत बना दिया।
हाँ, और ये इच्छाओं का तो कभी अंत हो ही नहीं सकता। हम कभी कभी इच्छाओं को एक तुलनात्मक दृष्टि से बताते हैं, जिस प्रकार मनुष्य की परछाई हो, वो परछाई अगर हम प्रकाश से दूर जा रहे हैं तो परछाई हमारी लंबी होती जाएगी होती जाएगी। इसीलिए कहा जाता है, दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम। वो प्रकाश से तो हम दूर जा ही रहे हैं, लेकिन परछाई भी लंबी होती जा रही है और पकड़ तो सकते नहीं है। तो न परछाई हाथ आती है, न हमें रोशनी का ही अनुभव होता है, तो अंधेरे में ही हम घूम रहे हैं और परछाई लंबी होती जा रही है। इसी प्रकार ईश्वर से हम दूर हो गए तो इच्छाएँ और बढ़ती जा रही।
बहुत सुंदर आपने बात कही कि परछाई जो है, जो इच्छाएं हैं वो परछाई की तरह हैं, और जैसे हम प्रकाश से दूर जाते जा रहे हैं, जैसे उस रोशनी से या ज्ञान से दूर जा रहे हैं, तो हम अपनी इच्छाओं को बड़ा
हाँ,
करते जा रहे हैं।
और अगर हम परछाई को पीठ देते हैं मान लो और रोशनी की ओर जाते हैं, तो परछाई हमारी छोटी छोटी होती जाएगी होती जाएगी, और जैसे ही हम रोशनी के पास पहुँचेंगे परछाई हमारे में समा जाएगी, क्योंकि परछाई और कुछ नहीं है, वो मेरा ही रिफ्लेक्शन है ना, और वो रोशनी के विपरीत है। तो जब रोशनी हमें प्राप्त होगी तो परछाई तो समाप्त हो जाएगी। और परमात्मा वास्तव में एक बीज के समान है, जैसे पूरे पेड़ को हमें प्राप्त करना है तो बीज को पकड़ लो, पेड़ तो आपको मिल ही जाएगा। तो आज हम ईश्वर से तो दूर जा ही रहे हैं, लेकिन अपने सच्चे स्वरूप से भी दूर जा रहे हैं और दुनिया के चकाचौंध में फंसते जा रहे, इच्छाओं के पीछे हम भागते जा रहे हैं, और परिणाम ये हो रहा है कि अंत में हम खाली हाथ ही रो रहे हैं। जैसे कबीर का एक सुंदर दोहा है कि कबीरा जब तुम पैदा हुए तब तुम रोए जग हंसा। बच्चा पैदा होता है तो रोता है और जग हंसता है कि खुशी होती कि बच्चा पैदा हुआ, लेकिन कबीरा ऐसी करनी कर चलो जो अंत में तुम हंसो जग रोए। तुम
कोई
हंसो,
रिग्रेट लेके
खुशी
नहीं
में
जाओ
रहो
जी।
कि तुमने बहुत ऊंचे महान कार्य किए, समाज को कुछ दिया, समाज को कुछ महान बनाने में सहयोग दिया, बाकी चीज़ तो वहीं की वहीं रह जाएगी, कुछ साथ तो आना नहीं है। लेकिन हम ये सब भूल गए हैं, इसलिए खुद से भी दूर चले गए, ईश्वर से भी दूर चले गए, लक्ष्य से भी दूर चले गए हैं, और परिणाम स्वरूप इस चकाचौंध में फंस गए हैं। फिर अंत में दुखी हो जाते हैं, समझते हैं कि ये तो कुछ मेरे साथ आना ही नहीं।
बिल्कुल,
तो इसलिए परिणाम ये हो गया है कि वो सब बातें भूलने के कारण ये इच्छाएं इंसान की बढ़ती जा रही
और हावी होती जा रही है कहीं ना
बिल्कुल।
कहीं। शीलू बहन जी, यहाँ एक और जो बात है कि हम माना कि खुद को भी भूल रहे हैं, लेकिन हम जो प्रेम है, जो प्रेम का एक एक ऐसा इमोशन है, एक ऐसी धारा प्रवाह, एक नदी है जो बहती है हमारे अंतर्मन में, हर इंसान में बहती है, और हम तो कहते हैं जानवरों में भी प्रेम होता है, उस एहसास किया जा सकता है, उसका मूल स्वरूप क्या है, क्या है प्रेम?
तो जिस प्रकार शांति आत्मा का स्वधर्म है, स्वभाव है, उसी प्रकार प्रेम भी आत्मा का ही स्वभाव है। हर आत्मा अपने मूल स्वभाव में प्रेम स्वरूप है। इसलिए कई लोग कहते हैं ना, कोई मुझे प्यार नहीं करता, मान लो एक शिकायत है, कोई मुझे प्यार नहीं करता, तो हम उनसे पूछते हैं कि पहले आप बताइए आप कितनों को प्यार करते हो। तो वो सोच में पड़ जाता है, मैं कितनों को प्यार करता हूँ? तुम कहते प्यार दोगे तो प्यार मिलेगा।
और एक और सवाल है कि क्या हम स्वयं से भी प्यार करते हैं?
ये भी है,
एक बात ये है कि
स्वयं से भी प्यार, ईश्वर से भी प्यार, सबसे प्यार, प्रकृति से प्यार, मनुष्यों से प्यार, सारे संसार से प्यार। प्यार ये आत्मा की शक्ति है। जिस प्रकार सूर्य सबको प्रकाश देता है, जल सबको शीतलता देता है, वो ये हद नहीं रखता कि इसको मुझे देना है इसको नहीं देना है। तो प्रेम या प्यार या स्नेह ये आत्मा का स्वभाव है। छोटा बच्चा पैदा होता है वो कितना प्यारा लगता है, हम बच्चे को कितना प्यार करते हैं, और वो भी वो प्यार को अनुभव करता तो वो इतना खुश होता है। अब प्यार वो मांगता नहीं है, लेकिन हम स्वाभाविक रूप से उसे प्यार देते हैं, कितना निष्कपट निश्चल, मानो वो इतना सुंदर वो प्यार लगता है, क्योंकि उसकी आत्मा से प्यार है। जरूरी नहीं कि वो बच्चा कोई सुंदर हो, दिखने में तभी प्यार होता नहीं, हर एक बच्चे के लिए प्यार होगा। और बच्चा तो इतना निर्दोष है तो वो बच्चा सुंदर ही लगता है चाहे वो कैसा भी हो। तो ये जो प्यार है ये आत्मा से निकलता है, इसलिए प्यार मांगा नहीं जाता है, प्यार दिया जाता है।
बहुत सुंदर आपने बात कही कि प्यार एक्चुअली उस एस्पेक्ट को समझना कि देने की बात है, लेकिन बहुत मुश्किल हो जाता है प्रैक्टिकल लाइफ में। अगर हम देखें आज की इस वही चकाचौंध की बात है, उससे एक्चुअली निकल पाना और या फिर उसी में रहते हुए अपने आप को एक दृढ़ निश्चय से एक अलग रास्ते पर लेकर चलना। क्योंकि यहाँ सवाल ये उठता है कि जब हम प्यार करते हैं तो हमें हर्ट होता है, प्रेम में दर्द क्यों, एक ये सवाल भी है। दूसरी बात, प्रेम है तो हम दूसरे को बदलना क्यों चाहते हैं? मैं आपसे प्रेम करती हूँ तो मैं चाहूँगी कि आप मेरी तरह ये कीजिए, आप मेरी तरह ये खाइए, मेरी तरह ये क्यों, क्यों मेरी ये इच्छा है कि मैं आपको बदल दूँ क्योंकि मैं आपसे प्रेम करती हूँ।
वास्तव में प्रेम में हर्ट नहीं होता, अगर प्रेम में हर्ट होता है तो ये सच्चा प्यार नहीं है, ये प्यार नहीं है, ये स्वार्थ है। क्योंकि हम चाहेंगे कि मेरा आपसे प्यार है तो आप मेरे जैसा ही बने, परंतु जब प्यार है तो हम सबको प्यार देंगे, समान रूप से प्यार देंगे, ये नहीं कि इसको प्यार देंगे इसको प्यार नहीं देंगे। क्योंकि आत्मा का ये मौलिक गुण है, मूल क्वालिटी है, इसलिए सबको देंगे। जैसे गुलाब के फूल में खुशबू है तो जो भी उसकी सुगंध लेगा उसको वो खुशबू प्राप्त होगी, लेकिन ये तब होगा जब हम उस आत्मिक स्थिति में हैं। और मैं ये अंदर में ये चिंतन करती रहती हूँ कि मैं आत्मा एक प्रेम स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, मुझे प्रेम ही देना है। और नफरत या वैर या दुश्मनी ये सब तब होता है जब हम किसी के देह को देखते हैं। जब देह को देखते हैं तो अंतर दिखाई देता है। अब मान लीजिए शरीर को हम देखते हैं तो इनकी आँखें कैसी है, इनका नाक कैसा है, फलाने का नाक कैसा है, उनकी आँखें कैसी है, होंठ कैसे हैं, मानो हर एक शरीर का अंग में हम कंपैरिजन करते हैं।
तो क्या हम उसको अवॉइड कर सकते हैं? इज इट पॉसिबल, जब मुझे स्वरूप दिख रहा है, मुझे आप दिख रही हैं कि आप एक खूबसूरत व्यक्ति हैं, तो मैं आपकी खूबसूरती को या आपकी अगर खूबसूरत नहीं भी हैं तो जो भी है उसको मैं लाइक या डिसलाइक कर अवॉइड कर सकती हूँ उसको, क्या मैं उससे ऊपर उठ सकती हूँ?
ये हम समझ लेते हैं कि भाई शरीर से जो प्यार है ना ये तो टेम्प्ररी चीज़ है, चलो किसी की सुंदरता से प्यार है, पर वो सुंदरता भी तो चार दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात, हम देखते हैं चंद्रमा पूनम के रात कितना सुंदर दिखाई देता है, लेकिन धीरे 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 उसकी कलाएँ घटती है। ये चमड़ी की सुंदरता भी तो कितने समय की, बीमारी आ गई, बुढ़ापा आ गया, गई सुंदरता, परिवर्तन तो शरीर में क्षण क्षण होता ही रहता है। तो ये जो बाह्य सुंदरता है इसका भी महत्व तब है जब अंदर की सुंदरता हो। अगर भीतर की आत्मा की गुणों की सुंदरता नहीं है तो कई बार ये सुंदरता भी दुख देती है। मान लीजिए किसी की सुंदरता से प्यार है लेकिन उसके अंदर क्रोध है तो कब तक उसकी सुंदरता प्यारी लगेगी? इस पर एक छोटा सा चुटकुला सुनाते हैं कि किसी का किसी से प्यार था, बड़ी सुंदर थी, चलो शादी का प्रपोजल हुआ, लेकिन वो बड़ी गुस्से वाली थी, परंतु उसका गुस्सा भी अच्छा लगता था। तो वो कहता था कि भाई आपके तो प्यार गुस्से में भी प्यार है, आपका चेहरा तो चंद्रमुखी की तरह है, बड़ा प्यारा है। लेकिन चलो उसके बाद शादी हुई तो शादी हुई तो थोड़ा अधिकार तो बढ़ ही गया शादी से पहले की भेंट में, तो गुस्सा तो बरकरार ही था और ही बढ़ता ही गया। तो फिर कहने में आया कि अभी तो आपका चेहरा सूर्यमुखी की तरह है, लेकिन जब बच्चे हुए तो गुस्सा तो और अति हो गया, तो फिर कहना पड़ा अभी तो आपका चेहरा ज्वालामुखी की तरह है।
तो चंद्रमुखी से ज्वालामुखी का ये रास्ता जी हुआ,
क्योंकि सुंदरता तो है तो ज्वालामुखी में भी बहुत सुंदरता, जिस समय वो ज्वालामुखी फटता है तो कहाँ चंद्रमुखी कहाँ ज्वालामुखी, पर वो सुंदरता किस काम की
जो जला दे, बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दे।
जी, तो इसीलिए आत्मा की सुंदरता वो सर्वश्रेष्ठ सुंदरता है, वो गुणों की सुंदरता है, और प्रेम तो इतनी खूबसूरत चीज है, हम भगवान से भी प्रेम करते हैं। मीरा और कृष्ण का क्या सुंदर प्रेम था, उस मीरा ने कृष्ण के सिवा और किसी को भी नहीं स्वीकारा और यही कहा जहाँ देखती हूँ तू ही तू है। तो ये भगवान से जो आत्मा का प्रेम हो, यही सबसे सच्चा प्रेम है।
बहुत सुंदर आपने बात कही कि कहीं ना कहीं उस एहसास को जो हमारे अंदर कंटिन्यूस बह रहा है, जो इतना नेचुरल है, उसे जोड़ना पड़ेगा हमें परमात्मा से।
जी
शिलु बहन, यहाँ एक और प्रेम से जुड़ी बात सामने ये आती है कि प्यार, जैसे मैंने कहा शुरू में, कि हर्ट भी देता है, दूसरी तरफ प्यार से अपेक्षाएं क्यों हैं, प्रेम से
जी
अपेक्षाएं क्यों हैं, क्यों मैं ये उम्मीद करती हूँ कि वो मेरे लिए ये करे।
जी
अच्छा, और कभी मैं हाई हूँ कभी लो है। प्रेम में ये कहते हैं कि जब वो मुझसे अच्छी तरह से बात कर रही हैं या कर रही हैं, तो मैं बहुत साथ में आसमान पर हूँ, हवा में उड़ रही हूँ, खुश हूँ, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। सडनली वो बात नहीं हो रही है तो आप एक मेजर डिप्रेशन में हैं। ये जो ऐसा सीसॉ जो चलता है
हाँ
इमोशंस का, ये प्रेम है या नहीं है, या ये
नहीं,
सिर्फ
प्रेम
अटैचमेंट है?
तो क्यों नहीं है, लेकिन जैसे हमने बताया, एक तो प्रेम में एक्सपेक्टेशंस बहुत हो जाते हैं, दूसरा फिर हम प्रेम में परफेक्शन भी देखना चाहते हैं। तो परफेक्शन जब देखना चाहते हैं और देखते हैं कि दूसरा व्यक्ति परफेक्ट नहीं है और उनकी हम कमियों को, कमजोरियों को, उनकी वीकनेसेस तरफ हम ध्यान देते हैं, तो कई बार वो प्रेम नफरत के रूप में बदल जाता है। आज मुझे आपसे क्यों प्रेम है, क्योंकि मैंने आप में कई खूबियां देखी, लेकिन कल मैंने अगर आपकी कोई ऐसी वीकनेस देखी तो तुरंत मैं रिपेल कर सकती हूँ। वैसे क्या होता है कि जहाँ समानता है ना, वहाँ प्रेम ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन जहाँ भी अंतर होता है वहाँ रिपल्शन होता है, क्योंकि प्रकृति के अंदर इसका ऑपोजिट है। प्रकृति के अंदर नॉर्थ एंड साउथ अट्रैक्ट, और वो जो अट्रैक्शन है नॉर्थ और साउथ में, इसीलिए मैग्नेटिक मैग्नेट्स आपस में
अपोजिट अट्रैक्ट्स
अट्रैक्ट्स,
एंड
और जहाँ लाइकनेस है वहाँ रिपेल होते हैं, पर जहाँ स्पिरिचुअलिटी है, जहाँ आत्मिक शक्ति की बात आती है, वहाँ लाइकनेस अट्रैक्ट्स, समान विचार अट्रैक्ट करेंगे, समान संस्कार अट्रैक्ट करेंगे, समान गुण अट्रैक्ट करेंगे, तो जहाँ पर अंतर हो गया वहाँ रिपल्शन होगा। तो क्या है, हमने प्रकृति के आधार पर ऑपोजिट सेक्स से समझो अट्रैक्ट हो गए, लेकिन फिर वो अट्रैक्शन है क्योंकि ब्यूटी है, और आत्मा का एक गुण है सुंदर, सत्यम शिवम सुंदरम हम कहते हैं, तो वो सुंदर वो गुण तो है आत्मा का, लेकिन फिर जहाँ ऑपोजिट्स में आ गए और जो मेरे गुण और आपके गुण मिले नहीं, तो वहाँ फिर रिपल्शन हो जाता है, इसीलिए फिर नफरत आ जाती है।
बिल्कुल। और जहाँ हमने बात की एक्सपेक्टेशंस की, जहाँ हमने ये बात की कि मुझे आपसे ये उम्मीद है, तो क्या ये प्यार है, ये मैं ये जानना चाहती हूँ, या मैं ये मान लूँ कि ये शाश्वत नहीं है, क्या है वो प्रेम जो शाश्वत रहेगा?
हाँ, ये ज़रूर प्रेम का स्वरूप है कि जिससे प्रेम होगा वो हम चाहेंगे कि वो मेरे जैसा बने, क्योंकि लाइकनेस चाहिए ना। लेकिन फिर जब हमें ये ज्ञान मिलता है कि इस संसार में हर एक इंडिविजुअल यूनिक है, हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है, एक न मिले दूसरे से, दो अंगूठों की छाप नहीं मिलती है, यहाँ तक कि आजकल डीएनए करते तो एक बाल का भी दूसरे से बाल नहीं मिलता, इतना अंतर है। तो जबकि हर एक यूनिक है, तो हम हर एक की यूनिकनेस को समझें, और चाहे कितने भी अवगुण क्यों ना हो हर एक में, लेकिन उसके अंदर एक गुण ज़रूर होगा। ये है स्पिरिचुअल वे से प्रेम करना, कि ये सब भगवान की रचना है, और भगवान की रचना होने के कारण कोई भी बहुत बुरा नहीं है, चाहे बहुत बुराइयां होगी भी, लेकिन एक अच्छाई जरूर है, और वो एक अच्छाई हम पिकअप कर लें और उनसे प्रेम करें उसी अच्छाई के आधार पर। बुराई के आधार पर प्रेम नहीं किया जा सकता है, लेकिन अच्छाई के आधार पर प्रेम किया जा सकता है।
और यहाँ इंडिविजुअल प्रेम जो है, एक एक व्यक्तिगत प्रेम, मेरा आपसे प्रेम, मेरा इससे प्रेम, मेरा उससे प्रेम, उसे हम जगती के प्रेम में कैसे बदल सकते हैं? हाउ कैन आई कन्वर्ट द इंडिविजुअल लव इनटू इटर्नल लव?
इटर्नल लव, यूनिवर्सल लव, लव फॉर ऑल ह्यूमैनिटी, वो तब होगा जब हम ईश्वर से प्रेम करें। देखिए, जब हम पेड़ को पानी देना चाहते हैं तो एक एक पत्ते को पानी देने जाएंगे तो पेड़ को पानी नहीं मिलने वाला है, अगर हमें पेड़ को पानी देना है तो बीज को पानी देना होगा,
जड़ों को पानी,
जड़ों को पानी देना होगा, और जब जड़ों को पानी देगा देंगे तब वो पेड़ को पहुंचेगा। तो एक एक व्यक्ति को प्रेम देने की जरूरत नहीं, ईश्वर से प्रेम करो। और फिर हम कहते हैं ये वसुधैव कुटुंबकम है, इसलिए सब भगवान की रचना है, सब ईश्वर के बच्चे हैं, तो परिणाम स्वरूप हम सबको प्रेम करेंगे। तो संसार ही भगवान का परिवार है, इसलिए हर एक से प्रेम है, हर एक को मुझे देना है। और जहाँ प्रेम होता है वहाँ देने की भावना होती है।
बिल्कुल, ये बहुत सुंदर आपने बात कही कि देना ही सच्चा स्वरूप है प्रेम का। लेकिन ऐशिलु बहन, आज के इस दौर में इतने ऑब्स्टिकल्स हैं, वही बात मैंने कही कि अभी मैं और आप बात कर रहे हैं तो मेरे दिमाग में ये रहेगा कि देना ही प्रेम है, और कहीं ना कहीं दूसरे को बदलने का प्रयत्न करना प्रेम नहीं हो सकता। लेकिन जब हम आम जिंदगी में आते हैं, हर कदम पे वी हैव बीन ब्रॉट अप लाइक दिस, और मे बी इट्स द सोसाइटी, यू नो, जिस तरह से हम बड़े हुए हैं, जिस तरह से हमारा समाज इस वक्त है, इतना डायनामिक है, हर कदम पे वक्त बदल रहा है, चीज़ें बदल रही हैं। कैसे हम अपने आप को प्रैक्टिकली इस बात का हर कदम पे एहसास दिला सकते हैं कि मेरी आत्मा का मूल स्वरूप प्रेम है और किसी दूसरे को बदलना मेरा प्रेम नहीं हो सकता। ये कैसे कर सकते?
ये हमें अपने आप को समझाना होगा कि मैं किसी को बदल नहीं सकती, अगर मैं बदल सकती हूँ तो केवल खुद को बदल सकती हूँ। हम देख रहे दूसरा नहीं बदल रहा है तो अपने आप को हम दुखी कर देते हैं, ये अज्ञानता है। और जब हमें यह समझ आ जाती है कि हम दूसरे को नहीं बदल सकते, हम प्रेम दे करके अवश्य उसके अंदर शक्ति भर सकते हैं जो वो बदल सके। अगर हम सीधा किसको कहेंगे तुम बदलो, वो नहीं बदलेगा, लेकिन हम उसको उतना ही प्रेम दें और उसके अंदर में ये विचार आए कि मुझे बदलना है, क्योंकि कितना मुझे प्यार दे रही है, कितना मुझ पर अटेंशन दे रही है। तो जैसे माँ बच्चे का प्यार है, माँ बच्चे को कितना देती है, पर बच्चा भी अगर समझे कि माँ मेरे लिए कितना त्याग कर रही है, कितना प्यार दे रही है कि मैं भी कुछ करूँ, परंतु अगर बच्चे में स्वार्थ ही होगा तो वो बच्चा रिटर्न में कुछ परिवर्तन नहीं करेगा। परंतु ये हर एक में अगर ये विचार आए कि मैं एक प्रेम स्वरूप हूँ और जैसे ये मुझे प्रेम दे रहे हैं मैं भी प्रेम दूँ। लेकिन क्या हो गया है कि प्रेम को आज ऐसा विकृत रूप में हमने ले लिया है, हम उसको केवल फिजिकल वे में ही लेते हैं और वो प्रेम मोह का रूप ले रहा है। जैसे माँ का बच्चे में प्यार है लेकिन ये मेरा है, पति पत्नी का प्यार है पर एक पोजेसिवनेस है, तो जहाँ पोजेसिवनेस और मोह आ जाता है वो विकृति आ जाती है।
बिल्कुल, और छोड़ देना, यू नो, अगर मैं उनसे प्यार करती हूँ या किसी से प्यार करती हूँ, बच्चे से प्यार कर रही हूँ, उसे छोड़ देना, उसे पनपने देना, लोगों तक और पहुँचने देना, ये बहुत मुश्किल हो जाता है। कैसे इस, यू नो, कि मेरा है ये, इससे निकला जाए?
ये अटैचमेंट भी एक विकार बन जाता है, विकृति बन जाती है। यहाँ फिर हम ईश्वर को बीच में लाते हैं, ये भगवान का दिया हुआ है, तो जैसे भगवान की दी हुई चीज़ मेरे पास एक अमानत है, जैसे किसकी अमानत मेरे पास होती है तो मैं उसको संभाल करके भी रखूँगी, ध्यान भी दूँगी, लेकिन अंदर में मोह तो नहीं है क्योंकि पता है कि एक दिन ये मुझसे ले जाएगा वापस। तो इस संसार में जिससे भी मैं प्यार करूँ उसको भगवान की अमानत समझूँ। प्यार भी है पर अमानत भी है, और कभी भी अगर मेरे से चला जाएगा, छूट जाएगा, जिसकी चीज़ है वो उसको ही प्राप्त होगी। आज क्या है, प्रेम तो सुखदाई है लेकिन मोह दुखदाई है, पोजेसिवनेस दुखदाई है। मुझे याद है एक बार एक माता थी, अपने बच्चे को बहुत मार रही थी, छोटा सा बच्चा था, मैं समझती हूँ 1 साल का होगा। अच्छा। मार ही रही थी। तो मैंने उसे कहा, बहन जी इतना छोटा सा बच्चा आप उसको क्यों मार रही हो, क्या भूल की होगी उसने, छोटे से बच्चे ने चलो कुछ गिरा दिया होगा, कुछ किया होगा। तो जैसे ही मैंने उसे कहा माता जी क्यों मार रही हो, इतनी गुस्से हो गई, एक तो बच्चे पर ही गुस्सा उतार रही थी, मार रही थी, फिर मुझ पर भी गुस्सा करने लगी, कहती तुम्हारा क्या जाता, मेरा बच्चा है।
वही मेरा बच्चा है, मेरी वाइफ है, मेरा हक है, हक हक हमें हटाना पड़ेगा।
हाँ, ये हक हटाना होगा, क्योंकि आज जितने भी हमारे जीवन में हम देखते हैं ये सब कर्मों के हिसाब किताब है, जो भी रिलेशनशिप्स बने हैं ये कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार है। माँ बाप, पति पत्नी, भाई बहन, मामा चाचा या जो कुछ भी है, और जब कर्मों का हिसाब किताब पूरा होता है कोई किसी का नहीं है।
बिल्कुल,
इसीलिए तो कहते अकेले आए हैं अकेले जाना है, न वस्तु न व्यक्ति न वैभव, हम न कुछ लाए हैं न ले जाएंगे। तो प्यार क्यों न हम सबसे रखें, वो मोहब्बत सबसे हो, ईश्वर से भी हो, प्रकृति से भी हो, हर आत्मा से हो, तो हम इस संसार में रहते हुए भी देने की भावना रख करके प्यार प्रेम बरकरार रखते हैं तो हम भी सुखी और सबको सुखी बनाते हैं।
बहुत सुंदर आपने आज बात कही, और आपने ये हमें एक्चुअली एक ऐसा रास्ता दिखलाने की कोशिश की कि जहाँ पोजेसिवनेस और हक होने का और अटैचमेंट होने का, जो मोह दुख का कारण है प्रेम में, और छोड़ देना, स्वतंत्रता जो है वो कहीं ना कहीं एक सुख का कारण है, वो एहसास अपने अंदर ही भीतर ही रखे। शीलू बहन जी, लेकिन एक बात हम ये भी जानना चाहेंगे कि कुछ प्रैक्टिकल तरीके भी हैं। जैसे हर बार हम ये कहते हैं कि मेडिटेशन एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा तरीका है जिससे कहीं ना कहीं हम ये जो सही रास्ते की बात कर रहे हैं, अटैचमेंट को तोड़ने की बात कर रहे हैं, मोह को छोड़ने की बात कर रही हैं, प्रैक्टिकल वे में उसे कैसे पॉसिबल कर सकते हैं, उस एक्सपीरियंस को हमारे साथ आप शेयर कर सकते हैं।
प्रैक्टिकल वे में ये अनुभव करने के लिए हमें अपने दृष्टिकोण को बदलना होगा, अपनी दृष्टि में वो पवित्र विचार लाने होंगे। जैसे मैंने बताया कि देह को देखने की बजाय आत्मा को देखने का एक अभ्यास करें कि हर एक के देह में यहाँ भ्रकुटी के मध्य एक आत्मा विराजमान है, और उसके नीचे हम आए तो अंतर सब दिखाई देगा, और यहाँ हम ध्यान से देखते हैं तो आत्मा हमें विजुअलाइज होगी, एक चमकता हुआ सितारा, हरे की आत्मा यहाँ भ्रकुटि के मध्य विराजमान है, वो सबकी समान है। हरे की आत्मा बड़ी शुद्ध है, पवित्र है, शांत स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है। तो आत्मा से प्यार करना सीखें, देह से प्यार की बजाय आत्मा से प्यार, ये शाश्वत प्यार है। आपने जैसे शुरू में शाश्वत प्यार की बात कही, तो ये शाश्वत प्यार शरीर से नहीं हो सकता है क्योंकि शरीर तो मिट्टी है, तो मिट्टी से प्यार, ये शाश्वत प्यार कहाँ हुआ, वो मिट्टी तो मिट्टी में मिल जाएगी।
लेकिन यहाँ बहुत प्रैक्टिकल ऑब्स्टिकल्स आ जाते हैं, क्योंकि वो देह से प्यार करना, या वो ममता की बात करें, मोह की बात करें, या आदमी और औरत की भी बात करें, मतलब रिश्तों की बात करें, तो वो इतना प्यारा लग रहा होता है इस वक्त, उसमें डूबने का इतना मन कर रहा होता है, चाहे वो दर्द की तरफ ही ले जा रहा है, वो प्रैक्टिकल जो ऑब्स्टिकल है कि हम डूब जाना चाहते हैं, यू नो, इंद्रियों में, आँखों में, बात में, आवाज़ में, चेहरे में डूब जाना चाहते हैं, उससे कैसे अपने आप को रोका जाए, क्योंकि ये बार बार ऑब्स्टिकल आती है, बार बार ये रुकावट आती है।
हाँ।
ये एक आज की बहुत बड़ी समस्या है, और कैसे वो उस आत्मा तक पहुँचे।
ये ऑब्स्टिकल इसलिए आती है क्योंकि हम बहुत बॉडी कॉन्शियस बन गए हैं, ये बॉडी कॉन्शियसनेस ही सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल है, और इस बॉडी कॉन्शियसनेस को जब तक हमने नहीं त्यागा है तब तक ये ऑब्स्टिकल बना ही रहेगा, और उसके लिए सोल कॉन्शियसनेस चाहिए। हर वक्त वो सोल कॉन्शियसनेस बनी रहे, मैं एक आत्मा हूँ, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, मुझे देना है, देवता की तरह देना है। हम लोग कहते हैं देवता, भारत की संस्कृति में देवता का महत्व है, हर चीज़ को हम देवता के रूप में देखते, अग्नि देवता, वायु देवता, पृथ्वी देवता, देवता वरुण देवता, यानी तत्वों को हमने देवता का रूप माना क्योंकि वो देते हैं,
दे हैं।
हाँ, तो मानव भी अगर दाता के रूप में हो और सबके लिए समान प्रेम देता हो तो वो भी तो भगवान से कम नहीं है। इसीलिए बड़ा सुंदर गीत है, न दिया न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपना फल, अपनों का दूजों को जो दे वो सच्चा इंसान, वो धरती का भगवान, यही प्रेम का स्वरूप है।
बहुत सुंदर आपने बात कही कि इंसान भी, मनुष्य भी कहीं ना कहीं धरती का देवता बन सकता है, देवता बन सकता है। आज बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ हमने उस स्वरूप को जानने की कोशिश की आपके साथ, उस शाश्वत प्रेम को तलाशने की कोशिश की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि प्रेम के जिस एहसास को, जिस सच्चे रूप को आज हमने तलाशने की कोशिश की है, जहां हमने ये जानना चाहा है कि देह से ऊपर उठ के आत्मा कि प्रेम को अगर हम पहचान लें, कहीं मोह दर्द का कारण है, दुख का कारण है, उसे समझ लें, तो शायद जो दर्द हम प्रेम में पाते हैं वो ना मिले और एक सुखद एहसास हमेशा हमारे जीवन में बना रहे। बदलते इस समाज में जहाँ हम इस बात का एहसास कर रहे हैं कि मूल्य टूट रहे हैं, कहीं ना कहीं पूरा समाज बिखर रहा है, ऐसे में उन्हीं मूल्यों को, उन्हीं वैल्यूज़ को फिर जीवंत करने का एक प्रयास है ये श्रृंखला। इसमें कल हम चर्चा करेंगे हैप्पीनेस की, यानी कि खुशी की। आप चाहें तो आप भी इस प्रोग्राम में इस श्रृंखला का एक हिस्सा बन सकते हैं। आप हमें ईमेल कर सकते हैं या फ़ोन पर भी अपना सवाल या अपने विचार हमें दे सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@gmail.com और हमारा फ़ोन नंबर है 9873666555। तो फिर कल आपसे मुलाकात करेंगे और जानेंगे कि क्या हमारे जीवन में खुशी या हैप्पीनेस हमेशा के लिए रह सकती है। तो फिर इंतज़ार कीजिए कल तक का। नमस्कार।